ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
केंद्र सरकार ने कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए, इन सब पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। शुरुआत सबसे पहले उस फैसले से जो देश के 80 करोड़ लोगों से जुड़ा है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पोषण युक्त चावल उपलब्ध कराने की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया है, यानी अगले 4 सालों तक देश के जरूरतमंद परिवारों को पोषण युक्त चावल मिलता रहेगा। इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। जी अदिति, आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में मीडिया को बताते हुए क्या कहा।
80 करोड़ नागरिकों को महीने के महीने फ्री राशन जो पहुंचाया जाता है, इस फ्री राशन के माध्यम से किस तरह से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाए और किस तरह से जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, एनीमिया की समस्या और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, हाउ डू वी एड्रेस द टू मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर फेसिंग आवर सोसाइटी।
शुरुआत इसी सवाल से कि पोषण युक्त चावल क्या होता है, आम चावल से ये कैसे अलग होता है, साथ ही चावल को पोषण युक्त बनाने की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, और सरकार जैसे कहती है कि इस फैसले से भारत को एनीमिया मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी, ये कैसे संभव होगा।
जो फूड फोर्टिफिकेशन का कैंपेन है वो पूरे विश्व में सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अपनाया है। तरह तरह के फूड्स में आप फोर्टिफिकेशन करके ये कोशिश करते हैं कि आम तौर पे जो चीज कंज्यूम की जाती है, चाहे वो राइस है, चाहे वो वीट है या किसी और किस्म का स्टेपल फूड है, उसको और न्यूट्रिएंट रिच, उसमें और पोषक तत्व कैसे ऐड किया जा सके। अब भारत में इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जितने भी बार हुआ है, अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, उसमें भी यही निकला है कि जो प्रोपोर्शन है प्रेग्नेंट इंडियन वुमेन की, जो 15 साल से ऑनवर्ड्स और बाद में जो प्रेगनेंसी में भी वुमेन की एनीमिया की जो प्रोपोर्शन है वो करीब करीब 50% है। और ये इसके बावजूद कि 1970 में इंडिया ने पहला प्रोग्राम बनाया था न्यूट्रिशनल एनीमिया से डील करने के लिए। उस प्रोग्राम में क्या होता था कि आप ये एक्सपेक्ट करते थे कि जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो 100 टैबलेट्स आयरन और फॉलिक एसिड की 3 महीने की प्रेगनेंसी में खा लेंगी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि बहुत वक्त तो ऐसा होता था कि महिलाएं खा नहीं पाती थी या उनको मिल नहीं पाती थी और किसी ना किसी वजह से ये प्रोग्राम फेल हो गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके बाद हुए कि किस तरीके से एनीमिया से डील किया जा सके। पहले तो आपके लिसनर्स के लिए ये बता दें कि एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ही नहीं है, उसमें ये भी है कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी होती है। इन तीनों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है और रिसर्च ने यह बताया है कि जो वेजिटेरियन फूड्स हैं उसमें विटामिन B12 बहुत कम होता है। तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ भारत, जिसको कहते हैं हम लोग जितने भी सिटीजन हैं, ज्यादातर वेजिटेरियन हैं, उसकी वजह से एनीमिया की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन B12 की बनी रहती है। तो अब उससे जूझने का क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय ये है कि 65% जो इंडियंस हैं वो चावल कंज्यूम करते हैं स्टेपल डाइट की तरह, तो उन चावलों को किस तरीके से फोर्टिफाई किया जा सके। जिस कैबिनेट अप्रूवल का आप बात कर रहे हैं वो यही प्रोग्राम है जो ये कहता है कि राइस के माध्यम से आप ये जो आयरन डेफिशिएंसी है, ये आयरन, फॉलिक एसिड और B12 अपनी कम से कम 65% इंडिया की पॉपुलेशन तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो राइस को कंज्यूम करते हैं स्टेपल फूड की तरह, रोजमर्रा की लाइफ में अपनी खाते हैं। तो राइस फोर्टिफिकेशन क्या होती है? राइस फोर्टिफिकेशन ये होती है कि आप फैक्ट्री के माध्यम से, आपने हर फैक्ट्री में कुछ ऐसे एनेबलिंग प्रोविजंस बना दिए हैं कि जो कस्टम मिल राइस की फैक्ट्रीज हैं उसी में इक्विपमेंट के तहत इक्विपमेंट इंस्टॉल की गई है जिसके तहत फोर्टिफाइड, जिसको कहते हैं फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, छोटे छोटे पदार्थ राइस के जो फोर्टिफाई किए गए हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक रेगुलर गाइडलाइन है इसके लिए कि कितने उन कर्नल्स में कितना न्यूट्रिशन होगा किस पदार्थ का। ये बनाए जाते हैं सेपरेटली और फिर कस्टम मिल राइस के साथ इसको ऐड करके फिर जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं तरह तरह के, जैसे कि हमने पोषण अभियान है उसके थ्रू, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके थ्रू, हर गवर्नमेंट के प्रोग्राम के थ्रू इसको पहुंचाया जाता है। इसका पायलट आपको याद है कि शुरू हुआ था 2022 में, और 2024 तक तमाम गवर्नमेंट की स्कीम्स में सक्सेसफुली इसको डिसबर्स किया गया था। अब ये डिसाइड किया है कैबिनेट ने कि ये जो प्रोग्राम है यूनिवर्सली उपलब्ध होगा, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन होगी फोर्टिफाइड राइस की 2028 तक।
अगला फैसला जो मंत्रिमंडल का था वो है गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने का। सरकार ने इस परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। आइए पहले सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को।
लोथल में नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरिटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है इस कैबिनेट के डिसीजन में। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे, एक लाइट हाउसेज का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे, और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था वो कम्प्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा।
ये परियोजना दो चरणों में पूरी की जानी है। ये परियोजना क्या है और ये कैसे हमारी 4,500 साल पुरानी समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगी, इस पर हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
भारतवर्ष में जो समुद्री हेरिटेज है वो कोई आज की नहीं है, 4,500 साल पुराना इसका विरासत है समुद्री हेरिटेज का, जिसको हम मैरीटाइम हेरिटेज भी कहते हैं। और जो लोथल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होता था पुराने जमानों में। इनफैक्ट जो हमारी हिस्ट्री है मैरीटाइम हिस्ट्री, उसमें ये बताया गया है कि कम से कम कनौजी आंग्रे जो हैं वो छत्रपति शिवाजी के नेवल कमांडर थे, चोलाज और पांड्यास जो थे वो बड़ी बड़ी नेवल और मर्चेंट फ्लीट्स को मेंटेन किया करते थे अपने जमानों में। ओडिशा से मर्चेंट शिप्स उन जमानों में इतने साल पहले श्रीलंका जाया करती थी, बाली जावा जाया करती थी। जो लोथल है जिसमें अब ये नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का ये प्रोजेक्ट है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी हुआ करता था ट्रेडिशनल हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से, मतलब 2400 BC की बात कर रही हूं मैं। ये तब से ये जो सिटी है बहुत इंपॉर्टेंट एक मैरीटाइम हेरिटेज की सिटी हुआ करती थी। यहाँ शिप बिल्डिंग हुआ करती थी, मर्चेंट फ्लीट मेंटेन हुआ करती थी, और एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था वल्लभी यूनिवर्सिटी, जहां पर मैरीटाइम शिप बिल्डिंग मर्चेंट फ्लीट के एक्सरसाइजेस में ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी उस जमाने में 2400 BC में पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। तो हमारी जो मैरिटाइम हेरिटेज है, तमाम बाकी हेरिटेज बाकी विरासत की तरह थोड़ी सी निग्लेक्ट हुई है ओवर द ईयर्स, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो क्योंकि लोथल हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, एक इंपॉर्टेंट मैरिटाइम सेंटर था, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज ने ये डिसाइड किया कि जो वर्ल्ड क्लास नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है जिसको अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है लोथल में, वो लोथल में बनाया जाएगा। और इसका सबसे खूबसूरत जो एलिमेंट होगा वो ये होगा कि दुनिया का सबसे टॉल जिसको कहते हैं लाइट हाउस म्यूजियम बनाने का यहाँ पर प्लान है। बहुत कुछ बनेगा, इसमें 6 गैलरीज होंगी, उन गैलरीज में इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के जितने भी एक्सटर्नल नेवल आर्टिफैक्ट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे उसमें INS निशांक, सी हैरियर वॉर एयरक्राफ्ट, UH-3 हेलीकॉप्टर, उसमें रेप्लिका मॉडल लोथल टाउनशिप का जो उस जमाने में हड़प्पन टाइम्स में हुआ करती थी वो क्रिएट किया जाएगा। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसको, इसका जो डिजाइन है वो बहुत ही रेनाउंड जो आर्किटेक्ट्स हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने बनाया है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो टाटा प्रोजेक्ट्स को दी गई है। आपको पता है कि टाटाज ने अभी हाल ही में हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग भी बनाया है, तो उसकी सक्सेस के बाद ये प्रोजेक्ट भी वही बनाएंगे। और जो ये फेज वन में होगा लाइट हाउस म्यूजियम बनेगा, और उसके बाद जो फेज टू होगा उसमें कोस्टल स्टेट्स पेविलियन बनेंगे। ये जो पेविलियंस हैं ये मतलब जितनी भी कोस्टल स्टेट्स और यूटीज हैं भारत में वो अपना अपना एक पेविलियन बनाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में। ये नहीं कि सिर्फ लोथल का ही हेरिटेज वहां पर दिखाया जाएगा, पूरे भारत में जहां जहां कोस्टल स्टेट्स हैं उन सबको मौका दिया जाएगा कि वो अपनी अपनी कोस्टल हेरिटेज को लोथल के कोस्टल पेविलियन में डेमोन्स्ट्रेट करें। एक अलग से हॉस्पिटैलिटी का जोन बनेगा जिसमें मैरीटाइम थीम पर एक इको रिजॉर्ट बनेगा और खाने पीने की जगह बनेगी, और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी होगी जिसमें बच्चे भी आके अपना देख सकें, अपनी हेरिटेज समझ सकें। एक मैरीटाइम इंस्टीट्यूट और हॉस्टल का भी प्रावधान है इस कॉम्प्लेक्स में। और 4 थीम बेस्ड पार्क्स बनेंगे जिसमें पहला होगा मैरीटाइम, दूसरा होगा नेवल थीम पर, तीसरा क्लाइमेट चेंज थीम पार्क होगा, और चौथा होगा मॉन्यूमेंट्स एंड एडवेंचर एंड अम्यूजमेंट पार्क। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है।
इस तरह से ये एक और भारत के पर्यटन स्थलों में से एक और खूबसूरत स्थल होने वाला है।
बिल्कुल, और टूरिज्म को बढ़ावा देना एक बहुत इम्पोर्टेंट इस पर्टिकुलर हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का जो है एक पर्पस है। और इससे ये भी उम्मीद की जा रही है कि 15,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 7,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, तो टोटल करीब 22,000 जॉब्स इससे एक्सपेक्टेड हैं कि क्रिएट होंगे, तो वो भी लोकल इकोनॉमी को भी एनर्जाइज करेंगे। और टूरिज्म का तो एक बहुत बड़ा सेंटर ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में बनेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो लाइट हाउस म्यूजियम बनाने का प्रावधान है, वो जो लाइट हाउस म्यूजियम है आदित्य, वो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइट शिप्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक संस्था है जिसपे बहुत ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हमें पता है कि मैरिटाइम हेरिटेज की तो कोई बात ही नहीं करता। ये पहली बार हमने भी सुना है अपनी लंबे करियर में कि ऐसी कोई बात भी हो रही है। तो वो लाइट हाउस म्यूजियम जो होगा वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट म्यूजियम, लाइट हाउस म्यूजियम बनाने का प्रावधान है, तो एक ग्लोबल जिसको कहते हैं हॉलमार्क बनेगा वो, ना सिर्फ भारत का।
अब हम बढ़ते हैं अगले फैसले की तरफ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल लिया, वो है राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण को मंजूरी देना। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को मोदी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। ये फैसला भी सरकार की इस नीति को दर्शाता है। पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुनते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा।
तो राजस्थान और पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें 2280 किलोमीटर नए रोड नेटवर्क का डेवलप करने का निर्णय लिया गया है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉर्डर एरियाज में, लाइवलीहुड पे, कनेक्टिविटी पे, बहुत बड़ी फैसिलिटी इससे बनेगी। और बहुत ध्यान रखा गया कि जो हाईवे नेटवर्क देश भर में डेवलप हो रहा है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए, जिससे कि उन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिक उनको वही फैसिलिटीज मिले जो देश के बाकी हिस्सों में मिल रही।
हम आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले के बारे में और साथ ही कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं की जरूरत आखिर क्यों इतनी जरूरी हो जाती है।
सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये स्कीम कब शुरू हुई थी। ये एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो सरकार का बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम, आजकल हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसके बारे में सुनते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह 15 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। और इसका मकसद ये था कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की जाए जो बॉर्डर में विलेजेस हैं 19 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स की जो बॉर्डर पर हों, और जहां जहां भी बॉर्डर्स हैं, जैसे राजस्थान और पंजाब जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल हुआ है, करीब 2,280 किलोमीटर रोड्स बनेंगी करीब 4,000 करोड़ की लागत से। तो हम जानते हैं कि राजस्थान और पंजाब का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है, और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा इस वक्त बहुत फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। जाहिर सी बात है कि पुलवामा के अटैक के बाद, उसके बाद जितनी तमाम अभी तक जम्मू कश्मीर में पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलता रहा है और चुनावों को भी डिसरप्ट करने की कोशिश हुई है, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आमतौर पर क्या देखा गया है कि जब आप बॉर्डर पर इंटेलिजेंस गैदर करने जाते हैं तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कारगिल का भी युद्ध, अगर भारत ने एडवांटेज पाया था वो सिर्फ इसलिए पाया था क्योंकि वहां ह्यूमन इंटेलिजेंस इंडिया के फेवर में थी। हमें बहुत सारी जानकारी पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन के बारे में चरवाहों से मिली थी। उसी तरीके से जब आप बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करते हैं, बॉर्डर विलेजेस में रहने वाले लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड फील करते हैं, आप उनको रोड्स देते हैं, आप उनको टेली कम्युनिकेशन के टावर्स देते हैं और जितनी तमाम सुविधाएं हैं वहां पर, वाटर फैसिलिटी देते हैं, ये सब जब देते हैं वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड फील करते हैं, उनकी ईज ऑफ लिविंग होती है लाइफ में, तो वो उन विलेजेस से माइग्रेट नहीं करते बाहर। क्या देखा गया है पिछले सालों में कि बॉर्डर विलेजेस से बहुत से लोग, क्योंकि वहां सुविधाएं ही नहीं है, तो सुविधाएं ना होने की वजह से क्या होता है कि लोग अपने गांव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन करते हैं। आप अगर उत्तराखंड में जाके देखिएगा तो आपको करीब 70 से 90 ऐसी विलेजेस मिल जाएंगी बॉर्डर पे जहां कोई है ही नहीं, जिनको घोस्ट विलेजेस कहा जा रहा है। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत वहां पर पुनर्निवास किया जा रहा है लोगों का, क्योंकि वहां डेवलपमेंट जा रही है। अगर मेरे घर में मुझे सब कुछ मिलेगा तो मैं बाहर क्यों जाऊंगी। ये पर्पस है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, कि आप बॉर्डर विलेजेस को इतना फोर्टिफाई कर दीजिए कि कोई वहां पर इन्फिल्ट्रेशन का मौका ही ना मिले, वहां लोग बसे रहें, वहां विलेजेस बसे रहें, वहां स्कूल्स खुलें, वहां अच्छी रोड्स हों, आवाजाही हो। तो जब एक वाइब्रेंट और जिसको कहते हैं एनर्जेटिक एटमोस्फियर रहेगा बॉर्डर विलेजेस पे, तो हमारे लिए सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी की व्यू पॉइंट से वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये पर्पस है इस स्कीम का।
आप हमसे चर्चा में जुड़ी, आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।